थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी, मुझको है पता
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा पुनः नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आज आप सब भी कुशल हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो अपने प्रेम भरे पत्र को हम तक पहुँचाते हैं, अपनी गवाहियाँ, प्रार्थना के निवेदन और अपनी आशीषों को, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कह सकें। यदि आप भी परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हैं, अवश्य हमें पत्र लिखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 11 से 18 पद का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम अपने जीवन में सुने और सीखें, निश्चित रूप से यह हमारे जीवन के लिए लाभकारी बन सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं और किसी न किसी तरीके से मानसिक दबाव में हैं। पिता परमेश्वर, आप उन सब के साथ होइए, उन्हें अपनी शांति और आनंद प्रदान कीजिए। आज अपने जीवित वचन के द्वारा उनसे बातचीत कीजिए, ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और आज के वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस सेवक के गुणों के 3 परिप्रेक्ष्य को प्रकट करने के बाद अब पौलुस अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है। पौलुस की व्यक्तिगत पुकार, यह पौलुस के मन की पुकार प्रतीत होती है। वह कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए कैसा ललकता था। वे मसीह में विश्वास के शिशु थे, बच्चे थे। वे अभी सांसारिकता से मुक्त नहीं थे, परंतु उसका मन उनके लिए ललकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अध्याय में और अगले अध्याय में उसका दिल टूट गया है। आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 11 से 13 पद। 11 से 13 पद में लिखा है, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। ध्यान दीजिए, पौलुस अपने प्रेम भरे दिल को खोल रहा है और वह अपने प्रेमियों के हृदय में भी हलचल उत्पन्न करता है। यहाँ रोचक बात तो यह है कि वह परमेश्वर से और उसके वचन से घृणा करने वालों और परमेश्वर से तथा धर्मशास्त्र के प्रेमियों को हानि पहुंचाने का प्रयास करने वालों के मन को भी विहल कर देता है। जी हाँ, कलीसिया के आरंभिक इतिहास में हम देखते हैं कि यह सच है, वरन आज भी यह सच ही है। यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े हों, तो पाएंगे कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम धर्मशास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंच रहे हैं। यह एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो गलत समझाया जाता है और गलत व्यवहार में लिया जाता है। इसे कुछ लोग अति कठोर एवं प्रेम से रहित बना देते हैं, परंतु पौलुस की ये बातें एक दुखी मन से निकल रही थी, क्योंकि वह कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए बहुत अधिक चिंतित रहता था, कारण वह उनसे बहुत प्रेम करता था। 2 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ध्यान दीजिए, पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे मूर्ति पूजा पूर्ण त्याग कर दें। उन्हें शरीर संबंधित पापों का भी त्याग करना है, उन्हें सांसारिकता से भी पृथक जीवन जीना है। आज कुछ विश्वासी सांसारिकता से अलग कहलाते हैं, परंतु वे यथासंभव सांसारिक ही होते हैं। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने अपने प्रजा को एक नियम दिया था, क्योंकि वे खेती करते थे। यह नियम था कि वे बैल और गधे को हल में एक साथ न जोतें, जो असमान पशुओं को जोतना हुआ, और दोनों पशु अपने अपने बल से कार्य नहीं कर पाएंगे। एक शुद्ध पशु था और एक अशुद्ध पशु था। यहाँ परमेश्वर अविश्वासियों को आदेश देता है कि वे असमान जुए में न जुतें, अर्थात अविश्वासियों के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी न करें। यह कैसे होता है? उदाहरण के लिए देखें, व्यापार में साझेदारी, अन्य साझेदारी, विवाह, कोई भी विस्तृत उद्यम आदि। कई बार एक विश्वासी परिवार अविश्वासी परिवार से अपने बेटे के लिए बहू लेकर के आता है, और कई बार एक विश्वासी परिवार अपनी बेटी को अविश्वासी परिवार में बहू के लिए देता है, और तब हम देखते हैं कि ये परिवार समस्याओं के घेरे में पड़ जाते हैं और ये विवाह अधिक दिन तक नहीं चल पाते हैं। मेरे मित्रों, निश्चय ही विवाह दो का साथ जोता जाना है। एक अविश्वासी और एक विश्वासी को विवाह नहीं करना चाहिए। हल चलाने के लिए शुद्ध और अशुद्ध पशुओं का परस्पर एक साथ जोता जाना उचित नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी है। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ नहीं रखे जा सकते हैं। आप दो नाव पर पैर रख करके नदी पार नहीं कर सकते हैं। आपको एक ही को चुनना है। इसी प्रकार एक रूढ़िवादी विश्वासी किसी ऐसे मसीही संस्थान में काम करता है जो मुक्त विचारवादी हैं, तो उसका वहां रहना उचित नहीं, क्योंकि वह बाइबल के महान सत्यों में विश्वास रखता है, परंतु वह वहां से वेतन पाता है और उनके विचारों एवं कार्यों को उसे स्वीकार करना होता है। वह उनके साथ अत्यधिक स्पर्श गम्य एवं वास्तविकता से जुड़ा है। वह उन अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जूता हुआ है। मेरे प्रियो, अब मान लीजिए कि आपके नगर में एक प्रचारक आता है और एक या दो सप्ताह की सभाएं करता है। यद्यपि उसकी विधियों का आप अनुमोदन नहीं करते, परमेश्वर उसे आशीष दे रहा है। क्या आप उसके साथ जुड़ेंगे? एक बार एक प्रचारक हमारे नगर में आया और हमसे संपर्क किए बिना उसने मेरे और हमारे कुछ कलीसियाओं के सदस्यों की आराधनालयों में जा करके अपना तंबू खड़ा कर दिया। इसके पश्चात वह हमसे सहायता मांगने के लिए आया। मैं तो रूढ़िवादी था, अतः मैं उसके आचार विचार के कारण उसकी सहायता से पीछे हट गया। वह कुछ सनकी सा था। उसकी सभाएं अनौपचारिक थी। वह प्रवचन के मध्य अकस्मात ही रुक जाता था और कोई घोषणा करता था या भेंट लेता था। वहां के कुछ सेवकों ने, जो कि रूढ़िवादी थे, हमने परस्पर भी विचार विमर्श किया। यद्यपि हम उसकी विधियों से सहमत नहीं थे, हमने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उसने वहां दो सप्ताह सभाएं की और उसकी सेवा के द्वारा मनुष्यों ने उद्धार पाया। मैं उसके साथ स्थायी समझौता का समर्पण नहीं कर सकता था, परंतु जब तक वह वहां था, मैंने उसे अपना सहयोग दिया। हम दोनों एक जीवे में नहीं जुते थे। मेरे मित्रों, पौलुस की प्रचार नीति पर ध्यान दीजिए। पौलुस किसी भी नए नगर में जाता था तो सबसे पहले वह यहूदियों के आराधनालय में जाता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहूदियों के आराधनालय से अधिक मसीह का विरोध कहीं और नहीं होगा? तथापि पौलुस वहीं से प्रचार आरंभ करता था। मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह मार्ग सुझाया था। अब यदि पौलुस उनसे जुड़ जाता और उनका रब्बी या शिक्षक बन जाता और वहीं रुक जाता, तो यह था उनके साथ जुए में जुतना। पौलुस के कहने का अर्थ है, स्थायी समझौता जैसे विवाह, व्यापारिक साझेदारी या संस्था का काम या कलीसिया की सदस्यता, इस पद का प्रसंग प्रचार अभियान में मेरे सहयोग से नहीं है। अनेक प्रचारक अपनी सेवा मेरी रीति से नहीं करते हैं और कुछ तो मुझसे कहीं अधिक सफलता पाते हैं। इसका अर्थ हो सकता है कि वे सही हैं और मैं गलत, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और मैं जैसे काम कर रहा हूं वैसे ही करता रहना चाहता हूं। परंतु इससे मैं उनके साथ सहभागिता नहीं तोड़ूंगा जो मुझसे भिन्न विधि अपनाते हैं, जब तक कि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। पौलुस के कहने का अभिप्राय है कि हम अविश्वासियों के साथ न जुड़ें। अगले पद में हम देखेंगे कि वह इसे स्पष्ट करता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासियों के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मित्रों ध्यान दीजिए, जहां तक मेरा प्रश्न है, निश्चय ही उनके साथ मेरी भागीदारी नहीं है। मैं उनके साथ स्थायी समझौता नहीं करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप भी नहीं करेंगे। हम इस आदेश को गलत समझकर हमसे अलग विधि द्वारा प्रचार करने वाले विश्वासियों के साथ या संबंध में प्रासंगिक न बनाएं। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब पौलुस मूर्ति पूजा पर विशेष चर्चा करता है। परमेश्वर के मंदिर का मूर्ति पूजा से कोई भी समझौता नहीं है। परमेश्वर का यह मंदिर कहाँ है? विश्वासी की देह परमेश्वर का मंदिर है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, जिसमें परमेश्वर अंतर्वास करता है। वह मूर्तियों के साथ समझौता नहीं कर सकता। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे अलग होकर अपना शोधन करें। उन्हें मूर्तियों से साझेदारी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उन्हें मूर्तियों से साझेदारी नहीं करना है। उन्हें सांसारिकता वरन सांसारिकता की मानसिकता से अलग रहना है। यह आसानी से कलीसियाओं और विश्वासियों के जीवन में प्रवेश कर जाती है। विश्वासी को अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यहोशू की पुस्तक में हमने देखा था कि विश्वास ही के द्वारा यहोशू और इसराइल वंशियों ने यरीहो का गढ़ वाला नगर जीता था, परंतु अकान ने परमेश्वर द्वारा घोषित अशुद्ध एवं श्रापित वस्तु घर में रख ली थी। उनका अगला चरण ऐ नगर जीतने का था। वह एक छोटा नगर था और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे उसे जीत लेंगे, परंतु यहोशू और इसराइल की बहुत बुरी पराजय हुई। परमेश्वर सांसारिकता और अशुद्ध वस्तुओं से पृथकीकरण चाहता है, अलगाव चाहता है। उनकी हार इस कारण हुई क्योंकि उन्होंने अशुद्ध वस्तुएं अपने घर में रख ली थी। मेरे प्रियो, आज अनेक विश्वासी अपने आप को पृथक कहते हैं। वे यह नहीं करते, वह नहीं करते, परंतु वे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। उनकी जीभ ओछी है। उन्हें बोध नहीं होता कि यह तो सांसारिकता और अशुद्धता है। दूसरी ओर वे कपड़े भी ऐसे मर्यादा से रहित पहनते हैं और खाने में पेटूपन दिखाते हैं, परंतु कहते हैं कि वे पृथक विश्वासी हैं। मैं किसी का न्याय करना नहीं चाहता। हमें किसी का न्याय करना भी नहीं चाहिए, परंतु मेरा मन कहता है कि चेतावनी दूं। हमें बहुत ही अधिक सावधान रहना है। परमेश्वर की बातें करना, मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहना और कहना कि वह हमसे प्रेम करता है, उसके निमित्त स्वयं को पृथक मानना बहुत आसान है, परंतु सच तो यह है, यथार्थ में उसके लिए पृथक होना कठिन बात है। संसार से अलग हम नहीं हैं। मेरे प्रियो, जब मैंने सेवा में प्रवेश करने का निर्णय लिया था, तब मेरे जीवन में काफी रुकावटें आई। जिस कार्य को मैं करना नहीं चाहता था, उन्हीं को मैं करता था, अर्थात सांसारिकता मुझसे दूर नहीं हो पाती थी और धीरे धीरे मैं उससे छूट पाया। मेरे कहने का मतलब है कि आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उससे छुटकारा पाएं, अपने आप को उससे अलग करें। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के समय मैं एक बैंक में काम कर रहा था। उसका एक सहकर्मी अत्यधिक अभक्त और सांसारिक था, परंतु वह आराधना में स्तुति के गीत गाता था। एक दिन उस बैंक का उपाध्यक्ष आराधना में गया तो देखता है कि वह व्यक्ति एक गीत गा रहा है, यीशु है मेरी पनाह। आराधना समाप्त होने के बाद एक महिला उस उपाध्यक्ष के पास आई और बोली, क्या उसका गीत एक महान गीत नहीं था? ऐसे लग रहा था कि सुर स्वर्ग से उतर रहे हैं। अब क्योंकि वह उसे प्रतिदिन कार्यालय में देखता था, इसलिए वह जानता था कि यीशु को वह अपनी पनाह नहीं मानता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वह महिला किसी काम से बैंक में आई तो यह गायक बही खाते मिला रहा था और वे मेल नहीं खा रहे थे। क्रोध के कारण वह गालियां मुंह से निकाल रहा था। वह स्त्री उसे देखकर और सुनकर विस्मित रह गई और उपाध्यक्ष से पूछा, वह व्यक्ति कौन है? उसने कहा, यही वही आवाज है जिसे रविवार के दिन आराधना में सुनकर आप कह रही थी कि वह स्वर्ग से उतरते सुर हैं। बैंक का उपाध्यक्ष क्रोधी एवं दुष्ट स्वभाव का था, क्योंकि उसने एक नामधारी विश्वासी को गाते सुना था कि यीशु उसकी पनाह है, परंतु वह वास्तव में उसे स्वीकार नहीं करता था। वह जानता था कि वह व्यक्ति दुराचारी है, शराबी है और गालियां बकता है। वह मानता था कि विश्वासी ऐसे नहीं होते हैं। जी हाँ, इस कुप्रभाव के कारण वह अविश्वासी हो गया था। वह मेरे मित्र की ओर झुक करके बोला, यदि आप वास्तव में प्रचारक न बने तो प्रचार सेवा न करें। मैं उनकी यह बात कभी नहीं भूलता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। यदि आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं, तो स्वयं को विश्वासी न कहें। कभी न कहें कि यीशु आपकी पनाह है, यदि आप उसके शरण में नहीं हैं। पौलुस इसी बात को हमें कह रहा है। यह एक महिमामय प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मुझे एक सज्जन ने अपने पुत्र की कहानी सुनाई। वह कॉलेज पढ़ने के लिए जाता था। वह अपने पिता से अलग तो हो गया था, परंतु अब उसका पुत्र था। उसने मुझसे कहा, मैं उसके साथ पिता का सा व्यवहार नहीं कर पाता हूँ जो मेरे मन की कामना है। मैं उससे पिता के समान बात नहीं कर सकता। परमेश्वर यहाँ ठीक यही बात कह रहा है। यदि आप प्रभु यीशु के विश्वासी हैं तो परमेश्वर आपका पिता है। जी हाँ, इस बात को आप कभी ना भूलें। परमेश्वर आपसे जो कहना चाहता है वह यही है कि वह एक पिता का सा व्यवहार करना चाहता है। वह आपके साथ पुत्र पिता का व्यवहार करना चाहता है। यदि आप सांसारिकता चुनते हैं और अपने जीवन को पाखंड से भर देते हैं तो निश्चय जानिए कि पिता परमेश्वर आपकी ताड़ना करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपकी ताड़ना करता रहना नहीं चाहता है, इसीलिए वह कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। तब परमेश्वर आपके साथ पिता पुत्र के घनिष्ठ संबंध बनाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार में रहते हैं, जीवन जीते हैं, अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए अलग नहीं किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम उन जीवन को जी रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हमारे जीवन बुराइयों से घिरे हुए हैं, हम उनके मध्य में घिरे हुए हैं और समझौता कर बैठे हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि यदि मेरा और परमेश्वर पिता का, पिता पुत्र का संबंध घनिष्ठ हो तो मुझे और आपको उन सारी बुरी आदतों को छोड़ना है, ऐसी बातों को छोड़ना है जो परमेश्वर के लिए उचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन किस प्रकार से हैं, आपकी कलीसिया किस प्रकार से है, लेकिन आज इस वचन के प्रकाशन में हम अपने व्यक्तिगत जीवन को और कलीसियाई जीवन को जांच करके देखें। यदि मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो मुझे और आपको चाहिए कि हम इससे बाहर आएं। वह कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो ताकि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ पवित्र बना रह सके। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमें फिर से एक बार इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप चाहते हैं कि हम असमान जुए में न जूतें, परंतु हम आपके लिए पवित्र और निष्कलंक ठहरें, आपके लिए अलग किए जाएं, उन सांसारिक बातों को जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं अलग करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के समस्याओं के लिए जो इस समय प्रार्थना में मेरे साथ बैठे हैं। आप उनके जीवन के तकलीफों को, उनके जीवन की उन बुरी आदतों को, उन सांसारिक बातों को जानते हैं, उनके जीवन से दूर करें, उनकी सहायता करें ताकि वे अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकें। नशे की आदत, गुस्से की आदत और अन्य प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, गाली, जो भी बुरी बातें हैं, आप उन्हें मदद करें कि उससे बाहर आ जाएं और आपके लिए पृथक हो जाएं, एक अच्छे मसीही विश्वासी बन जाएं, एक नई सृष्टि बन जाएं जिसके द्वारा से आपको महिमा दे सकें। हाँ प्रभु जी, हम सब श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, प्रत्येक की सहायता और मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार हम सब से बोलने और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। वचन में बने रहें, अपने जीवन को प्रभु की निकटता में रखें, पवित्रता में बढ़ें और उसके संगति में आनंदित रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। मुझको है पता।